说我们的发音可以为谁样的发音方面呢？像丹田जिसमें वो बाकी उतरती नहीं है, जैसे चैतन्य के चालक में कर दिया बिना गबी सुनी के भर में बहुत किलो सात कृष्ण भर में मोर बहुत किलो सात आप बिना गति श्लोके लगे गए होता। वैसे ही हम लोगों ने यहां तक कि माता को छोड़ दिया पिता को भी छोड़ दिया रुपया पैसा छोड़ दिया छोड़ भी नहीं छूटता और छोटी छोटी बात जब क्रोध ही नहीं छूटता तो शास्त्रों में क्रोध की कहीं प्रशंसा है। ऐसा कौन सा शास्त्र है जिसमें क्रोध को खराब नहीं लग रहा है और ऐसा कौन सा महापुरुष महात्मा है जो क्रोध को पूरा नहीं लग रहा है और फिर इसी दिन को हृदय में रोपण कर इसमें पानी देकर के इसमें फल फूलित करके और बट वृक्ष जैसा हम बना लेते हैं उस क्रोध को तो फिर उसके नीचे कोमल भक्ति का भी अंकुरित होगा रस को ले लेगा कौन क्रोध को कैसा कहा पड़ता है। और ये यदि क्रोध अच्छी बात होती तो क्रोध को उत्पन्न करने के लिए हम लोग साधन करने करते और क्रोध यदि बुरी बात है तो उसको छोड़ने की चेष्टा करें क्योंकि उसको छोड़ने के लिए हम लोग क्या चेष्टा कर रहे हैं कहने कुछ क्रोध है ऐसा काम है ऐसा क्रोध है ऐसा
रजोगुण
समूह क्रोधा क्रोधा
क्रोध समूह
असमूह
बुद्धि
पंडित जी पंडित विद्या श्लोक उनको याद हो गया
इसके
स्मृति विद्रह
और उसको तो भ्रमण के बारे में
स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश बुद्धिनाश
भिन्नश परिश्य विनाश हो जाए रोज रोज हम पाप करते हैं हमारे मत में एक सन्यासी हमको पाप करने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट आज का विषय है क्योंकि इंपॉर्टेंट विषय देखते हैं तो जो दुख होता है जो कोई इस बात को ले नहीं पाता जो हम करते हैं गदगद क्रोध काम या क्रोध जो संघर्ष रहा है वो असल चीज को लेता ही नहीं है वो भी तक पहुंचता नहीं तो हम जो कुछ करते हैं वो क्या होता है सब मरुभूमि में जाकर दलीन हो जाता है। तब यदि कृषक सारा जीवन परिश्रम करें और एक उसको बीज न मिले तो उसको बड़ा आनंद हो जाए हताश हो जाता इसलिए मनुष्य भी उसको याद रखना चाहिए क्रोध तो एक ही दशा में एक ऐसी है जहां पर कि वो लाभदायक विदेशी कृष्ण का विदेशी यदि क्रोध तो उसको क्रोध करने से कुछ लाभ है और उसके लिए शास्त्रों में कुछ अहता दिया गया है मध्यम अधिकारियों के लिए उत्तम अधिकारी के लिए नहीं क्यों वो भी समझता है कि ये क्रोध से उसने भगवान की सेवा करता है इसलिए उसको क्रोध होगा ही नहीं तो मध्यम अधिकारियों को हो सकता है उसके लिए ये चाहिए उनको और किसी भी दशा में क्रोध हो रहा तो हमारे आश्रम में सुशीला में हमने देखा कि एक पूज्यपाद आश्रम महाराज थे, प्रभुपाद ने उनको संन्यास दिया। हमारे सामने बूढ़े थे, बूढ़े थे, बड़े सजन थे और साहित्यिक थे, लेखक थे, भक्ति पर भक्ति देवदार आदमी थे। तो नरसिंह महाराज जी और सब जितने भी हैं इनके पीछे लगते थे, तो वो पीछे लगते थे तो वो ऐसा करते थे जैसे ये लोग तो वो ओल नहीं खाते थे, ओल जाता है दिन कम दिन कम तो परिवर्तन जीव भी काट देगा हो जाएगा ऐसे। इसलिए उसमें टैटू उंगली या कोई मान नहीं हो लगेगा, तुम्हारी रुचि बैकुंठ में नहीं होगी। तो यहां से थोड़ी दूर पर बैकुंठ से अयोध्या चुनी और यहां से दूर, किंतु रास्ता एक ही है, रास्ता दो नहीं है। इसलिए तुम तो अयोध्या पुरी के मार्ग से ही तुम्हारे इष्ट देव के यहां जाना पड़ेगा। तो तुम जब जाएगा थोड़ी दूर पर तो अयोध्या पति रामचंद्र मिलेंगे और वहां से बहुत दूर ही द्वारावती में मथुरा के समान ही है, वहां लोग मिले। अयोध्या में तुम अभी मत ठहरना, इसलिए ठहरना कि तुम तो वहां से सुखपूर्वक द्वारकापुरी में जा सको, बस इसी संविधान के लिए अनुसंधान के लिए तुम कहा तुम जगपति के अत्यंत प्रिय हो, इसलिए तुम द्वारका जाओ और अपने प्रिय देवता का साक्षात करो। यहां पर कहना नहीं है कि अब इष्ट देव को दर्शन करना है तो उसका कुछ उपाय होता है, उपाय को पाने के लिए उपाय होता है। एक होता है साधन, एक साथ साधन को पाकर आने के लिए साधन की जरूरत, ये साधन अनुभवी गुरु बतला सकता है, दूसरा कोई नहीं बतला सकता। ये लाइफ सो कैन टेल हाउ वी कैन हैव अवर साधन एंड व्हाट इज साधन, दूसरा कोई ये बतला नहीं। नारायण जी यहां पर गुरु को बतला रहे हैं, अपने अनुभव को बतला रहे हैं। मैंने कल बतला परसों बतलाया था जो बैकुंठ से निकट है अयोध्या और दूर है द्वारका है द्वार, जो लोग भ्रजता है द्वारावती मैंने क्या वे प्रवेश करने के लिए दरवाजा है, वृंदावन जाने के लिए मथुरा जाने के लिए जब तक कि द्वारका से में प्रवेश नहीं होगा तब तक वहां नहीं है। ब्रज में शुद्ध माधुर्य है, वहां माधुर्य है किंतु थोड़ा ऐश्वर्य मिला हुआ है, तो ऐश्वर्य के माध्यम से ऐश्वर्य से तो तुम बैकुंठ से जा रहे हो, तो वहां तुमको जाना आवश्यक है और वहां जाने के लिए तुमको यहां पर भी जाना है, अयोध्या के माध्यम से भी तुमको जाना पड़ेगा, भारत का कोई है नहीं। तो घर में मथुरा पूरी जैसी द्वारा जैसी मैंने कहा एक ही समान है। वर्णन भी शास्त्रों में ऐसा किया गया है, ये उसी के समान ही। यहाँ के जितने भाव हैं, जैसे जस क्योंकि वसुदेव को अपना पिता माता मानते हैं कृष्ण, तो द्वारका पुर में मानते हैं कि नहीं, द्वारका पुर में भी बहुत माता पिता बलदेव जी भैया है वहां पर, किंतु थोड़ा सा ये है कि वहां पर और कुछ बन गए हैं, कुछ हो गए हैं, नाती हो गए हैं, विवाह हो गया है सबका, यहाँ पर ये अभी नहीं हुआ था, वहां पर ये सब और बढ़ गया है परिवार, यहाँ पर परिवार किंतु भावनाएं सब हो गई, इसलिए जैसा कहा गया है। और अयोध्या कैसा है, वैकुंठ जैसा, वैकुंठ में और इसमें करीब करीब निकट है, क्यों निकट है, यहां पर दास है और यहां पर भी दास है, रामचंद्र की लीला में भी दास के पास, किंतु दास होने पर भी कुछ वैशिष्ट, किंतु है तो दास है, तो बीच में एक प्रकोष्ठ है, एक प्राचीन है, विराट है, वो विराट की चीज की है, पत्नी सी विराट है ऐश्वर्य की, यहां पर अधिक ऐश्वर्य है, वहां थोड़ा कम है, क्योंकि दोनों ही दास से छोटा, इनके दास में कुछ विचित्रता है, प्रेम जरा कुछ अधिक है और वहां पर प्रेम जरा कम है, वो मुक्ति से लगा हुआ होने के लिए वहां पर प्रेम सेवा उत्तरा नहीं है, स्वस्थ प्रशांत ऐश्वर्य उत्तर नारायण को देख करके लोग भक्त लोगों को आनंद होता है, नारायण को आनंद होता है कि नहीं, ये कितने जितने भी भक्त हैं उनको नारायण को देख करके उन लोगों को आनंद होता है, क्योंकि होना क्या चाहिए प्रेम में, हमें देख करके प्रभु का आनंद है तब तक वो भक्ति है, और उनको देख करके हमको आनंद होता है तो अभी ये स्वस्थ उत्तर है, प्रेम से उत्तरा नहीं है, वहां पर दास है वहां पर भी दास है, किंतु यहां के दासों में प्रेम की कुछ कमी है, जैसे हाथ जोड़कर के लोग खड़े रहे हैं वो ऐसे अभय थे, और वहां जरूर जी नहीं है, जरूर जी बैठे रहेंगे, प्रभु बुलाएंगे, यदि कहीं जाना हुआ चाहने के लिए तो उनको बुला लिया था, बस हाथ जोड़कर के प्रार्थना इत्यादि सब करेंगे, कभी कभी जरूर में जो उनके पार्षद हैं नारायण के और हनुमान जी रामचंद्र जी के पार्षद हैं जो अयोध्या में रहते हैं, दोनों में अंतर थोड़ा सा बदला है, इससे आप लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं क्या अंतर, नारद जी गरुड़ के इनके भी प्रिय हैं, नारायण के भी और राम के भी औसित हैं, दोनों जगह का अनुभव है, और गरुड़ जी को केवल वैकुंठ का ही अधिक अनुभव है, वहां का अनुभव नहीं है, और हनुमान जी को वैकुंठ का अनुभव कम है, अयोध्या का अनुभव है, एक ही चीज तभी वो कुछ वैशिष्ट बदला है, रामचंद्र जी को इंद्र जी को ने नाग पाठ, नाग माने सर्प, सर्पों के पास से बांध करके एकदम उनको और लक्ष्मण दोनों को गिरा दिया, और ऐसे जोर से कसा कि दोनों बेहोश जैसे हैं, होश आने पर भी अपने को छुड़ा न सके, उनके लिए ये वरदान किसी को भी नाग पाठ में दम कर, नारद जी उस समय में बाई चांस रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए लंका में आए और देखा कि सब बंदर भागी हो रहे हैं और राम और लक्ष्मण की दिवस पड़े गरुड़ के पास में पहुंचे। गरुड़ जी रामचंद्र जी को आपके प्रभु ही है वो राम रूप में वहां गए हैं तो उनको नाग पाती है से बांध दिया गया है तस्तक नहीं हो रहे हैं आप पहुंचिए आपको पहुंचते ही आप लोग डर के मारे ये लोग छोड़ करके भाग गए और वो बंधन से सोचे कि हमारे प्रभु वहां पर गए हैं तो वो डर ही गए तो वहां पर पहुंचे और देखा कि दिवस पड़े हुए हैं और रामचंद्र जी भी विवश हो रहे हैं लक्ष्मण जी भी विवश हो आंखें जब लगाई हुई न मिला कर जैसे आदमी विवश हो जाता है चेष्टा सुन रहे हैं ये वहां पर उपस्थित हुए उनको देखते ही गरुड़ साथ में देखा कि गरुड़ ये आ गए और एक एक करके खा जाएंगे हमें जब देखा तभी उनके गंध से ही तब छोड़ करके खा अरे हमारे प्रभु को बड़े विचित्र में सदन पर जाने सर्वशक्ति नाम है और इनके चारों तरफ में सांसों ने लपेट लिया बांध लिया सब जैसे सारा और हमको देख करके हमारे गंध से ही बन गए तो फिर ये सर्वज्ञ और सर्वशक्ति नाम बढ़ेगा ये तो साधारण सूषमा हमारे प्रभु नारायण जी को ऐसे नहीं वो तो सर्वशक्ति नाम हमारे प्रभु और इनके तो चार हाथ हैं और इनके दो हाथ समुचक में बदा प्रभु लेते हैं उनको तो कोई लड़ाई में हरा नहीं सकता ये प्रभु है कि नहीं है इनको ये लोग दर्शन दे और संदेहात्मा गुरु वैष्णव और भगवान के प्रति किसी के भी संदेह हो जाए तो बस परमात्मा को सूचना हो जाए। अंत में इस बात को पूछने के लिए शंकर जी के यहां गए। शंकर ने कहा हो इसको संदेह हो गया है भगवत तरीके में ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई मुझे फुर्सत नहीं है मैं काम में जा रहा हूं। पहले ब्रह्मा जी के पास में गए ब्रह्मा जी ने कहा कि हम ये नहीं जानते हैं तुम शंकर के पास में शंकर जी ने कहा कि भाई हमको फुर्सत नहीं है अभी यदि भगवान के पक्ष में किसी को संदेह हो जाए तो मुक्त पुरुष तो उसको अपने समय के प्रभाव से हरि कथा से दूर कर सकता है साधारण आदमी उसका आसन करेंगे उसको भी संदेह हो जाएगा उस दोनों आदमी जाएंगे ऐसे लोगों का आसन नहीं करना चाहिए शंकर ने कहा ऐसे लोगों का आसन नहीं करना दूर कर अथवा इनके अभिमान को दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि खबर जाने खबर ही का भाषा उसी से इसको दूर करना चाहिए। यह राजा होकर के भी अपने प्रजा के पास में जाकर के दिन होकर के आत्मसमर्पण करें और सफल जाकर के इसका फल लें इसलिए भेज दिया तो वहां गए और कुछ दिन में रह करके इनको पक्षों प्रदेश और अनायन की समस्त बातें जब कही तब संदेह तब उनकी महिमा को समझा कि हाँ ये नारायण ही हुए और हनुमान जी जब अंजाम उनको ले गया तो चले गए छोटा दिन बना उनको रामचरित्र में कहीं भी कोई संदेह होता है और ऐसी कोई सेवा नहीं जो किया और उनको साधारण नर मान करके ही किया कभी उनको भगवान के रूप में ग्रहण ही नहीं किया कभी नहीं ग्रहण किया बस यही क्योंकि जानते हैं ये भगवान है हृदय से जानते हैं किंतु सेवा करते हैं क्योंकि ऐसा दिमाग तो रहेगा नहीं वहां किंतु भगवत बुद्धि रहेगी इनकी किंतु फिर भी मन नहीं रहते अनुसार में उनको संदेह कभी नहीं होगा उनके चरित्र का और उनकी यथावत सबसे बात आएंगे मनुष्य विदा के अनुरूप उनकी सेवा में सहायता करेंगे गरुड़ इत्यादि के द्वारा उस ऐसा नहीं है। नारद जी सब कुछ जानते हुए भी हनुमान जी जैसे सेवा नहीं करेंगे। कविता पाठ दान और ये सब के द्वारा करेंगे। कभी राम कहे करो बड़े दयालु आप हैं, आज का आपका पैर में नहीं पेड़ लगाऊ और आज सब माफ करूंगा। रामचंद्र देंगे और ये कहें बुद्धि में क्यों यहां पर उसी प्रकार कुछ अभिमान आता है। यदि करना पड़ेगा तो वैसा बनना पड़ेगा, ये तो नहीं बना। इसलिए हनुमान जी संकट होकर के बंदर बन करके निम्न श्रेणी में आकर के उनकी सेवा करो। यदि सेवा करना है तो अभिमान को छोड़कर के दीन होकर के नीचे आना पड़ेगा, तब सेवा मिलेगी। बड़ा बन करके कोई सेवा नहीं कर सकता है। इसलिए यद्यपि अयोध्या बैकुंठ के निकट है, कभी एक बीच में दीवार है, जिस दीवार की वजह से ये निकट रहने पर भी दीवार की वजह से थोड़ी सी दूर है, उसमें पाप करते हैं दोनों में। काफी है देखो, यदि अयोध्या के बिना जाए तो बुला नहीं, अयोध्या जाने और अयोध्या जाने का तरीका यह है कि यद्यपि गोपाल मंत्र से यह सिद्ध हो सकता था, क्योंकि गोपाल मंत्र का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, अपना काम बनाने की जरूरत है, जिससे हमारा काम बन जाए। अपने साधन को गुप्त रखो, गोपनीय नहीं रहने से प्रचार अपने फैल जाएगा तो जरूरी नहीं, इसको गोपनीय, किंतु गोपनीय गुरु से भी गोपनीय रखूंगा। जैसे सती जी ने गोपनीय रखा, झूठ बोल दिया और पिता ने एक संदेह रख लिया, तो व्यालू का ऐसा नहीं। तो कहती है कि तुम तो कार्य करना है, जिसे कार्य की सिद्धि है, इसमें तुम हे सीतापते, हे रघुनाथ, हे दशरथ नंदन, हे शुद्धवंशी श्री रामचंद्र जी, हे लक्ष्मण श्रेष्ठ, हे हनुमत प्रिय, हे सीतापते, हे सियाराम इत्यादि, आप इसी नामों का कीर्तन करते हुए और उन्हीं का कीर्तन जोर से करते हुए नहीं जाए, ऐसा नहीं करेगा तो नहीं पहुंच सकता है। क्यों? वहां पर रक्षक कौन है? वो बंदर सब है, बंदर जाने नहीं देंगे तुमको। और यदि जहां रामचंद्र जी का नाम सुना, तुम्हारे लिए अपने पल पावे बिछा देंगे, बड़े आदर करके तुम्हें ले जाएंगे। और यदि तुमने कहा कहीं रहते क्या गोपाल गोपाल भाई खाएगा तो मान नहीं दूसरे देंगे, तुम्हें करो। यहाँ पर यही सब नाम करना, क्या सीतापते श्री रघुनाथ लक्ष्मण ज्येष्ठ प्रमोद हनुमत प्रियवर इत्यादि का कीर्तन वेद शास्त्र ख्यातम स्मरण तब गुण रूप बल मंच, उनके नाम रूप गुण लीलाओं का स्मरण करके वैन नामों का और कीर्तन करते स्मरण क्या करो क्या रामचंद्र जी के गुणों का। बड़े भी नहीं है रामचंद्र जी होकर के भी कैसे थे विनय विद्या ददाति
विनय
विद्या पढ़ लिया पूरा पंडित हो गए सब पोथी पढ़ डाले और विनय नहीं हुआ पेड़ उठे जैसे कहते तब तो पांडित को कहा पांडित पति की परीक्षा इसमें है जटिल है और विनय क्या कहता है दादा की पात्र हम उसे पात्रता प्रदान करते हैं किसी के लिए जिस चीज को वो लाभ करना चाहता है। इसलिए भाई विद्या माने ही विनय तो विद्या का प्रति हम लोग सुने कोई हमसे साधारण भी व्यक्ति आए इसलिए आए बताइए विराजमान हुए सुशोभित आसन को सुशोभित होंगे कहाँ से प्रभाव रहे हैं बड़े विनय के साथ में संभाषण कर इसलिए महाराज से भेंट नहीं हो सकती भाषा का प्रयोग मत विशेष करके मत मंदिर भाई निम्रता के साथ में हम लोगों को दूसरों को सम्मान देते हैं नहीं भाई यहाँ पर जगह ही नहीं है उनका तो सात दिन जीवा सिर रगड़ेगा तो भी जगह नहीं मिलेगी जगह ही नहीं तो इसी तरह से गुरुदेवों के साथ में ना यही सफलता और यही बुद्धि मिलता है और जत्र अस्य बंधु अपि भवेत् प्रिय 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 प्रीति का तत्व कभी कनिष्ठ और जो काम हम कर न सके अभिन्न पैदा कर लिया हम नहीं करेंगे तो उपास को वही सबसे बड़ी मूर्खता अपने काम को निकाल लेना चला के चतुराई से ये बुद्धि लगता है और काम को बिगाड़ दिया तो ये मूर्खता हमको तो काम बनाना है तो इसी के लिए ये काम है बहुत ये गंभीर विषय है इसको समझो हम लोग जब उन्होंने कहा कि सीतापति रामचंद्र जानकी जीवन लक्ष्मण सीता बल्लभ इत्यादि नाम हो कज प्रमोद ये हमसे नहीं होगा इसमें हमारी एक आंतिकता नष्ट हुई है आई क्या ना चल राम ना सीतापति हनुमत अर्थात बुद्धिमत्ता है और मूर्खता किस क्या है से ही नहीं मूर्खता जीत पर अर्थ और कार्य को ध्वंस कर दिया और इष्ट की प्राप्ति हुई नहीं ये तो मूर्खता नहीं है अब जैसे देखो जब या जाप ग्राम जाओ जाओ की जब प्लेस में हो जाओ ग्राम बरसाने वाले महाराज दुर्गदान महाराज जी ने बहुत बड़ा भारी भवन बना दिया राधा जी निकल नहीं सकती घर से चारों तरफ से बैन लगा दिया गिवन बैन सो दैट राधा कहीं कम आउट ऑफ हिस्सा तो उन्होंने जाकर के उसे कहा कि देखो तुम्हारी बहू यदि सूर्य की पूजा करेगी तो करोड़ों गाय हो जाएंगे और तुम्हारा पति का भला होगा और कल्याण होगा धन धन को संपन्न हो जाएगा तो मेरी बहू तो सूर्य की पूजा करना तो मैं नहीं बाहर जाऊंगी घर से मैं देखिए ऐसा मतलब सुंदर सुंदर फूलों से फूल ले आना खाल भूखना और शरीर में अच्छी अच्छी मिठाइयां बनाना और सुख जी की पूजा कराना बैठे तुम इसे देखा से निकलो और कोई जरूरत नहीं बहुत जब मनाया तब ये माना और उन्हें पूर्णिमा भी आकर के कहीं राधा जी से बेटी तुम हमारी बात मान करके तुम कब तो ये तो चाहती थी अच्छा सूर्य पूजा के लिए अब वो सचमुच में सूर्य पूजा के लिए गई थी और सूर्य पूजा किया वो चतुर थी उनसे बढ़कर के और कोई चतुर हो सकता है कोई भी चतुर नहीं बाबू ना जाते हैं जाती हैं फूल चुनने जाती हैं कहां जा रही है फूल के लिए फूल चुन करके ला फूल चुनने में क्या होता है उसमें से मिलन अच्छे गजरे घू चुकी हैं अरे किस लिए ये बना रही है तुम्हें तो कहा कि सूर्य के लिए पूजा के लिए बन रहा तो इसीलिए माला गूंथन करती है मिठाई बना रही है लड्डू मोतीचूर
मनोहर लड्डू का
मनोहर लड्डू का और ये सब किस लिए तो सूर्य पूजा करना है। ठीक, कोई मना नहीं है, ये कर रहे हैं। अच्छा, पूजा करने के लिए गई, पूजा में पुरोहित मिल गए, अंदर टाइमिंग सुन की बात क्या बोल तू इदम एक पुष्पमाल्यम मम सर्व सर्वस्वम अर्पयामी पुष्पम अर्पणामी ओम मित्राय। हे मित्र, आपके लिए मैं पुष्पमाल्य और पुष्पांजलि हृदय को और हृदय के सब कुछ को आपके चरणों में हे मित्र ओम मित्राय। ओम दस द्वादश कलात्मने मित्राय नमः। यहाँ पर द्वादश कलात्मने मैंने द्वादश सदस्य, अरे हमको समय कहाँ है, मैं तो आज रास्ते से निकल रहा है इसीलिए नहीं तो हमको समय नहीं। यहाँ पर मैं ब्राह्मण का लड़का, मैं ये सब काम नहीं करता। आज आपके कहने से वृद्ध में महिला इसलिए मैंने करा दिया। जबकि वो कहते हैं कृष्ण के अतिरिक्त और दूसरों की हम पूजा नहीं करनी तो लाभ होता। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, प्राप्त उसको कहते हैं सदा जो मेरे अपने कार्य को उठा था। मैं कह रहा हूँ ऐसे विद्यापति नहीं कहा करके जाएगा हूं ना तो काम नहीं करेगा, इसलिए मैं कैसा कह रहा हूँ तो जाओ, मैं तो रास्ता ही नहीं, मैं 15 लोग तुमको जाने नहीं देंगे, यहाँ पर वैसे ही जाना पड़ेगा। निकट में रामचंद्र जी दंडकारण्य और ये सब चित्रकूट में कैसे गए, पैदल गए, जूता छाता नहीं है तो जूता छाता, इसलिए द्वारका से बैकुंठ से द्वारका दूर है किंतु अयोध्या से कुछ निकट है, उतनी दूर नहीं है, दूर वहां कोई बहुत दूर है किंतु दूर होने पर भी कुछ साम्यता है। वो कह रहे हैं तुम सुख से द्वारका यहां से पहुंच जाएगा क्योंकि तुम्हारे इष्ट देव में कुछ साम्य है, वो भी नरावतार है, नर लीला कर रहे हैं रामचंद्र और कृष्ण भी दुर्भोज हैं और तुम्हारे इष्ट ये भी तो भी बिना जूता के भी राम सब जगह दंड कारण में चारों तरफ में है। बल्कि ये लिखा है जो लोग दुर्गा बल श्याम राम को दंडकारण्य में घूमते हुए कांटे से विघ्न होने पर निकाल देने के पर जो रक्त गिर रहा चरणों से, ऐसे रामचंद्र जी का जो ध्यान करेंगे भव सागर को पार होकर के अयोध्या में राम को चंद्र को सह रूप में प्राप्त हो जाए। क्यों, इसलिए कहा रामचंद्र जी के पैरों में जब कांटा घुसेगा तो उसके दिल में दर्द होगा ना, दर्द किसको होगा जिसको प्रीति होती है। ऐसे हम लोग हैं और मान लिया कि कुछ कष्ट हो गया ना तो जिसको हमारे प्रति प्रीति है वो संकट में पावा जाए, ऐसे नहीं रहेगा बल्कि सुख का भाव याद नहीं रहेगा किंतु ये चीजें याद रहें। रामचंद्र जी सीता जी के पैरों में कांटा गड़ गया है, सीता जी उठ करके और झट बैठ गई और पैर को ऐसे गई और कांटा चुभ गया है बहुत, रामचंद्र जी झट बैठ गए और सीता जी का पैरों को अपने हाथों में ले लिए और पैरों पर अपने जंघों पर गोभी में उनका चरण ले लिया, आज तक कभी नहीं किया था, और उसको पकड़ करके खींचा उसको, और रक्त जब गिरने लगा तो अपना दुपट्टा काट दिया और वहां रख करके करके फिर उसी को बांध दिया। ये जीवन में शिकारी कभी भूलेंगी या उनका कोई भक्त मिलेगा? तो इसलिए कहते हैं कि उनके चरणों में जब रक्त गुजरा यदि आता है। आप ऐसे रामचंद्र जी का जो ध्यान कर रहे हैं बन बन फिर रुराई और उनका ये ऐसी स्थिति में कोई ध्यान करे तो झट बहुत सारे उनके पास करते उनके पास। ऐसे ही कृष्ण गोचारण में गए उनको कभी कांटा नहीं भी लगाना होगा और सखा लोग निकाली नहीं और जब थक जाते हैं उन्हें और मिलन प्रेसियों के साथ नहीं हुआ होगा तो वो नहीं कहेंगी, वो तो कहती हैं कली लता मरण शशि उसको क्या है चलत जब बेजा चारयन पसुन नलिन सुंदरम नागदेवरम शिलकिला कोई सिद्धि की देना कली लता मन कांत मन की साथ में उनका विदार होता है। मन कहता अरे क्यों तुम उनके लिए रो रही हो? हमारे कांत बंद प्रदेश में गए होंगे गैया चराने के लिए और पत्थर के टुकड़े में कीड़े उनके पैरों में नहीं लगते हैं, कांटे लगते होंगे, इसलिए मन बड़ा दुखी दुखी होने की क्या बात, सब जगह काटने और पत्थर के टुकड़े हैं, सब सीधे रास्ते नहीं है, इसके लिए चिंता करने की जरूरत है। तो गोपियां चाहती हैं अरे भाई गाय को सबक को घूमती है कांटे कुछ और ऊपर नीचे में जाती हैं कांटे कुछ में अधिक जाती हैं तो उनके पीछे पीछे जाने में उनको देरी कर। अरे मूर्खाओं अरे उनको भगवान ने लेकर नहीं दिए, देख करके नहीं चलते हैं मेरे सीधे रास्ते से कांटे कुछ में और उन्हें जाने की क्या जरूरत है? अरे गैया जब दौड़ करके भागेगी तो उनको रोकने के लिए क्या वो देकर के जाएंगे यहाँ काटा पूछा उनके इधर उधर नकल जाएंगे तब ही तो काटा पूछा उनके पर। इसी तरह से मन के साथ में उनका विराग भरा कली लता मना तम तगत और जब बन ले जाते हैं कैसे रोकिया तो यही कह रहे हैं दोनों की लीलाएं कुछ समय न मिलावत है इसलिए अयोध्या से कुछ निकट है बैकुंठ और अयोध्या निकट है कहां से बैकुंठ से। यहां पर कह रहे हैं जैसे रघुनाथ रूपस्य भगवतो अनुग्रह विशेषण जीव श्री गोपाल देव भगवान प्राप्त थे आप तो समझ रहे हो। देखो ये सनातन गोस्वामी भी कह रहे हैं इसलिए कह रहे हैं उनके शब्दों को समझे श्री रघुनाथ रूपस्य रघुनाथ जी का रूप है तो उस रूप के जो भगवान हैं आपका तो जो रामचंद्र जी हैं अनुग्रह विशेष है नहीं वह अर्थात रामचंद्र जी के विशेष अनुग्रह से ही श्री गोपाल देव भगवान प्राप्त थे। भगवान जो तुम्हारे इष्ट देवी गोपाल हैं वो सहज रूप में प्राप्त होंगे जैसे शिवस्य अनुग्रह विशेष है नहीं वो यथा विष्णु की जिस प्रकार से शंकर जी की कृपा से विष्णु की प्राप्ति होती है उसी तरह से रघुनाथ जी की कृपा से ही गाथा की कृपा क्यों ठीक बैकुंठ के नीचे शिवलोक इसलिए शिव जी बतला करके पिता करके उसको उपाय बतला देंगे अभी यहां से चले जाओ वृंदावन में और उपासना करते सबके यहां है यहां से सीधा रास्ता वहां नहीं है सीधा रास्ता वहां वृंदावन से है ना? ये शंकर जी बतलाएंगे दूसरा नहीं बतला सकता इसलिए शंकर जी की कृपा से जैसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है ऐसे ही रामचंद्र जी की कृपा से ही कैसे यदि कोई जानता है इस विषय को तो वह दंडका ऋषि के आश्रम के ऋषि लोग कितने 7000 ऋषि लोग तपस्या कर रहे थे और करोड़ों वर्षों से कर रहे थे किंतु गोपाल मंत्र की शुद्धि नहीं हुई। जब रामचंद्र जी दंडकारण्य में आए उन तोड़ों को देखा, देख करके आकर्षित हो गए और कहा ये तो मालूम होता जो वही इतना सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। तो मन ही मन में नहीं सकता आपने जो प्रभु हम किसी भी कम ही नहीं जो कि रूप से रामचंद्र जी की किताब हुई। मैंने कहा कि अच्छा ठीक, ये जो अगला आने वाला है ना जाकर दे, उसमें मैं खुद ही राम कृष्ण बन गया और उसमें तुम सब आकर के गोपी के घर में जन्म लेगी और हमको कहा सहयोग है ना। दूसरी बात, जनक की पुरखी जितनी राजकुमारियां थी राम के रूप को लेकर के लिप्त हो गई और ये प्रिंसेस ऑफ जनकपुर जनकपुरी वे सो मच अट्रैक्टेड विद इट, रागात्मक भक्तों के अनुगमन में डायरेक्ट वहां पर पहुंच जाएगा, जरूरत नहीं है जो क्या और बैकुंठ और संत वो बिरयानी की कहीं जरूरत नहीं है। यही वृंदावन से डायरेक्ट उस इसी वृंदावन में ही कृष्ण को पा करके और उनके साथ में फिर हो जाएगा, किंतु यहां पर क्रम मार्ग का विचार हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि रामचंद्र जी को जैसे माता पिता भाई बंधु सब परिवार हैं, ऐसे कृष्ण के भी परिवार हैं वहां जाता प्रेम, जैसे उनको परिवार नहीं है नारायण का, उनका परिवार बस एक ही परिवार है, कोई पुत्र नहीं। नारायण का ससुर कौन है? उनकी सास कौन है? कोई दिफादर ऑफ राम नारायण कोई उनका ससुर सास नहीं। उनका पिता कौन है? बेजन्मा है नारायण, बेजन्मा है, नो फादर नो मदर। उनका मित्र कौन है? कोई मित्र नहीं, सब दास है। किंतु अयोध्या में कुछ रामचंद्र जी के जैसे ये सब परिवार हैं, उनका भी परिवार है किंतु कृष्ण का परिवार उनको दो पुत्र केवल है और कृष्ण के कितने पुत्र हैं? एक एक पत्नियों के 10-10 पुत्र और एक एक कन्या या कितनी कन्या,
एक एक कन्या
तो 16,000 से गुणा कर दीजिए तो कितना पुत्र 16,000 बड़ा विराट परिवार है। उनके बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए 3 कोटी मास्टरों की जरूरत पड़ती थी, इतना बड़ा भारी परिवार। इसलिए अयोध्या से कुछ ये नहीं कर पाता, कभी अयोध्या से भिन्न कर पाऊंगा। तो कहते हैं कि बुद्धिमान कौन है? हम जो कहते हैं उसको पालन करो, अभी राम राम कह करके जाओ। जैसे वहां पर उदाहरण में हमने इसको स्पष्ट करने के लिए राधा जी की सूर्य पूजा और चंद्रानी की दुर्गा पूजा और गोपियों का पतियों से झूठ बोलना और सब जो है वो किस लिए? अपने इष्ट देव की प्राप्ति, वो कृष्ण की प्राप्ति है, इसलिए वहां पर कोई दोष नहीं है। और अपने सुख के लिए यदि हम करें तब तो होता अपने लिए मत करें, अपने सुख के लिए प्रसन्नता है तब तो वो काम हो जाएगा, भक्ति विरोधी हो जाएगा, तब तो वो मूर्ख हो जाएगा। इसलिए मूर्ख का मत कर, हम जो कहते हैं वही करो। एक बात और समझना, संकृतम तस्य प्रोदितम प्रभु कुर्वन गतस्तत्र प्रियेश्वरम श्रीकृष्णचंद्रम यदुवीवृतम चिरम विदिक्ष सती दक्षसी तम मन। और जब अयोध्या पार कर लेना तब तो फिर कृष्ण का संकीर्तन जैसा मैंने हे गोपाल इत्यादि ये सब अयोध्या तक जाते हुए तुम भीतर में अपनी निष्ठा ठीक रखना, अपने स्थित दे सको, किंतु ऊपर से ये कर ले उसमें कोई बुराई नहीं है। विशेष करके एक बात तुमको बतलाता हूं, ये खुद अच्छी तरह से समझना, यही बात करके अपना वक्त शब्द समाप्त। एक बात ये, अपने गुरु जी गुरु जी के पास में एक रोज शिष्य आकर के बैठता है, हटाने से भी नहीं हटता। और गुरु जी बड़े प्यार से प्रसाद पाने के बाद उसको रोटी का अपना जूठा टुकड़ा डाल देते हैं और वो पूछ लाता हुआ आकर के लेकर के फिर वो। और गुरु जी के पास में किसी चोट चोट के बदमाश को नहीं आने देता ना? तो उनका जो अपना सेवक है उस कुत्ते को प्यार करेगा कि नहीं जो गुरु सेवक है ना? उसको बड़ा प्यार करेगा। अंडरस्टैंडिंग, वेरी गुड, इंटरेस्टिंग थिंग। और गुरु जी की सेवा के लिए अपने प्राण को भी दे देने के लिए सब समय प्रस्तुत होता है। तो दूसरा सेवक उसको देकर के प्रसन्न होना चाहिए। यदि प्रसन्न नहीं होता है तो क्या समझो, कपटता है, देश हिंसा है। ऐसा आदमी बैकुंठ में क्या कभी उसको भक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए अपने इष्ट देव के प्रति यदि कोई थोड़ा सा भी आदर करता है उसको बहुत आदर करना चाहिए। यह भक्ति का लक्षण है। आ रहा है समझ में? यदि कोई व्यक्ति हमारे इष्ट देव का आदर करता है तो गुरु जी कहते थे कि इसको जमाई समझो, जमाई बाबू जैसा आदर करो। तो अपने इष्ट देव की प्राप्ति, और यदि इष्ट देव की प्राप्ति में कोई बाधक है तो उसे कोई संबंध मत रखो। तो वही ये कह रहे हैं, अपने इष्ट देव के प्रति इष्ट देव की प्राप्ति हो रही हो और अपने इष्ट देव का कोई जो भी आदर करता है तो क्या करो, उसका ऋणी बन जाओ। ये हमारे गुरु जी को इतना प्यार करता है, हमारे इष्ट देव का इतना प्यारा है ये, और हमारे कृष्ण के लिए इतना इसके हृदय में आदर है, तो उसका दासान दासान दास बन जाओ। यदि गुरु जी ये समझेंगे हम जिसको प्यार करते हैं उसको ये प्यार करता है और जिसे हमारा प्यार नहीं उसको प्यार नहीं करता, तो गुरु जी इस व्यक्ति को क्या करें, सबसे अधिक प्यार करें। भगवान के विषय में भी ऐसा ही समझ ठीक है। केवल एक थोड़ा सा ब्रज में कुछ उल्टी रीति दिखती है किंतु और कहीं नहीं, और वो उल्टी रीति केवल एक रस नहीं है, तीन रस चार रसों में नहीं है। यदि कोई कृष्ण को जसोदा जी के सामने प्यार करे तो जसोदा जी को ईर्ष्या होगी ना? कितना प्यार होगा। इफ एनीवन लव्स कृष्ण बिफोर श्रीमती जसोदा देन शी विल वेरी सो मच प्यार। जसोदा जी बड़ी पसंद, हमारे बेटे को ये पसंद, प्यार करता है। नंद बाबा के सामने कोई कृष्ण का चुंबन ले ले तो नंद बाबा को द्वेष होगा कि नहीं? बड़ा आनंद होगा। कृष्ण के भक्तों को वैसे ही कृष्ण की कोई सेवा करता है तो उनका ऋणी बन जाता है। केवल मधु रस एक है, उसमें कुछ विपरीत सा दिखता है। यदि राधा जी ने देख लिया ये कृष्ण को अधिक प्यार कर रही है, चंद्रावली आ सकती तो क्या कर रही है, उसके पास में मत जाने पाए, ये कुछ ऐसी व्यवस्था करो। किंतु वहां पर प्रेम की पराकाष्ठा, इसको समझना दूसरों की बड़ा खाली। इसलिए चंद्रावली को इतना प्राणों से भी अधिक आदर करती है, और वो चंद्रावली ही राधिका जी, दूसरी कोई नहीं है। इस चीज को समझने के लिए विशेष पूछनी चाहिए। इसलिए स्नेह का व्यतिक्रम वहां पर भी नहीं हुआ, इसलिए इनके लिए परामर्श दे रहे हैं। यदि तुम यहां देखो जिससे कि हमारे प्रभु इष्ट देव की प्रति हो रही है तो उसके प्रति तुम कृतज्ञ बनो। कैसे? राम के पास में जाओगे तो देखोगे वहां पर जाम राम जी बैठे होंगे, जाम भगवान तो फल नहीं है, जो उनके मंत्री थे जाम भगवान से भल्लू थे भल्लू थे, और उनके प्रधानमंत्री थे और उनसे पूछ करके कोई काम करते थे, किंतु कृष्ण लीला में ये कौन है, कृष्ण के क्या है,
ससुर,
कृष्ण के ससुर बन गए, इसलिए तुम्हारी सहायता करनी है। हनुमान रामचंद्र जी के सेवक हैं और ये हनुमान कृष्ण के साथ में अर्जुन के रथ के ऊपर में बैठे हुए हैं और वृंदावन में ज्योतिषर बन करके घूमकर काम करके यहां पर हैं, ये तुम्हारे लिए हनुमान भी तुम्हारी से कुछ सहायता कर सके, इन लोगों से तुम्हारी सहायता मिलेगी, इसलिए पहले तुम जाओ तुम वहां और अपना काम निकाल करके फिर अयोध्या में जाओ, इसलिए अयोध्या जाना तुम्हारा अच्छा है और इस देव तुम्हारे इस देव के प्रति इनकी जो निष्ठा है ये तुम्हारे लिए सहायक होगी, इसलिए इनके प्रति तुम ऋणी रहना, इसे विरोध मत करना, अन्याय इसलिए बड़ी बड़ी गुप्त रहस्य की बातें सनातन गोस्वामी जी प्रकट कर रहे हैं, ये सब की कहूंगी समझना भी बड़ा केवी ठीक है, एक तो साधारण श्लोकों को समझना तो श्लोक में उनको तो समझना ही नहीं है, आप टिकाएं जिसको सरल करके लिखे हुए उसको भी समझना, उन्होंने उदाहरण नहीं दिया है कोई केवल उन्हीं भर दिया है, उसको समझना बड़ा भारी मुश्किल है, इसलिए इन चीजों को समझ बूझ करके ऐसे ही साधन करने का होगा, फिर कल क्या होगा, फिर कल का बात आज ही भगवान साधन जनक भूमि भूमि कैसे यदि कोई सिद्धांत नहीं समझेगा तो केवल कहानी हिस्सा हो जाएगा, बहुत इधर उधर क्या ठाकुर जी के तरफ ठीक मतलब या तो उधर नहीं पता चला चले बंद लग रही है बड़ी गलती से बिना सिद्धांत के केवल कहानी हिस्सा हो जाए, इसलिए श्रीमद् भागवत रामायण वेद उपनिषद शास्त्र सिद्धांतों के ऊपर में प्रतिष्ठित है, जो लोग केवल कहानी किस्सा जानते हैं राम का या कृष्ण का और सिद्धांत ज्ञान नहीं है उनके समझ में कुछ नहीं है, कल ऊपर ही नहीं रह जाएंगे कुल दिशा, आप जो लोग सिद्धांत में प्रवेश करेगा उसके निजुन भाव को वो लोग समझ करके साधन भलन करके कुछ उपलब्धि कर सकते हैं मथान भी कर सकते, इसलिए पहले ये सिद्धांत को बतला करके फिर पीछे से क्या हुआ ये बतला, महाभारत ऊपर से देखने से केवल तामसिक लोगों का युद्ध है, युद्ध मारामारी चोरी बरजोरी यही सब, किंतु गीता से प्रवेश करेंगे देखेंगे गीता जैसा रत्न शांति पर्व का भक्ति पर्व का ये सब बहुत सी अच्छी चीजें सिद्धांत आवरण के भेद से कपड़े के भेद से हो सकता है कि हम लोग जो कुछ पहनेंगे हैं कपड़े इनमें भेद वैसे ही आवरण के भेद से हमें कुछ अंतर हो सकता है, किंतु एक शास्त्र हजार अमर दिव्य आत्मवस्तु है उसमें की समस्त भारत पुराण शास्त्र गीता भागवत जितने भी निर्धारित वही एक ही चीज की बात है, भीतर में एक है और ऊपर से वो एक क्या कहते हैं ना, ओल्ड इन न्यू बोटल, इन न्यू बोटल, हाँ इन न्यू बोटल, वाइन तो वही है, शराब तो वही है, किंतु बोटल नया और डिजाइन का बना दिया है। उसी तरह से एक तत्व वही भगवत भक्ति, यही एक परम तत्व है, पश्चिमी परम तत्व है, ये सब प्राथमिक आधार, किंतु ऊपर से किसी को किसी रंग में, किसी को किसी रंग में कुछ पूर्णता ले सकते, एक सफेद कपड़े का ब्रह्मचारी और सफेद कपड़े का परमहंस देश और लाल कपड़े का ब्रह्मचारी और सन्यासी, कपड़े से तो भेद है, वेश से भेद है, किंतु उनके ऊपर अंदर में जो तत्व जो दो भक्ति की जो भी सभी हूँ, भक्ति के रसिक हूँ, तत्वज्ञ हूँ, तब उनमें अंतर में क्या हूँ, भेद है, अंतर में एक ही वस्तु है। रामानंद सफेद कपड़े शिक्षा स्वरूप दामोदर सन्यासी देश और लाल कपड़े, दोनों का भक्ति का विचार एक अंश, ऐसे ही सब शास्त्रों में ऊपर से तो देखता पड़ता है, ये आवरण कुछ अलग अलग, भीतर में वस्तु एक, उसे को किसी शब्दों में कहीं किसी शब्दों में कहीं नहीं कहा। असल में ये समझना है, कहानी में ही समझनी है, उसके समझ में यदि वो तत्व आ गया है तो वो अपने आप कहानी गढ़ लेगा, कहानी भी गढ़ लेगा, और जहां कहीं शास्त्र में बातें हैं उसके उदाहरणों को वो ठीक ठीक रूप में समझ समझे जाएंगे। कल जो बताया था हमने, जो उन्होंने कहा कि द्वारका दूर है और अयोध्या निकट है, इसका तात्पर्य बताया, और मार्ग जाने का द्वारका किंतु एक ही मार्ग है, भक्ति की लता इस पृथ्वी लोक से निकलकर ब्रह्मांड को भेजकर, विद्या को भेजकर, सिद्ध लोग पाकर, सदाशिव लोग को भी पार कर गई, बैकुंठ अयोध्या गोलोक को भी कर गई, गोलोक में जाकर मथुरा को भी पार कर गई और अंत में ब्रजलोक भक्ति देखी गई नहीं, किंतु उसके उसकी जो लता है कुछ पृथ्वी लोक में है, कुछ ब्रह्मांड में है, कुछ दुर्गा के ऊपर में है, कुछ बैकुंठ में भी, और उसके ऊपर में गोलोक वृंदावन में जाकर के फलना फूलना और बढ़ना था, मुखिया उसमें कोई फल लगा, फल कहीं नहीं लगा, फल नहीं लगा, किंतु लता एक ही है, ऐसे ये अयोध्या के होकर के ये लता जा रही है और उसी को अवलंबन करके हमारे ये दो की मार्जित करते हैं। कथल अयोध्या की निकटता, द्वारकापुरी की दूरी और एक चीज विशेष बदला है, एकांतिकता की हानि कैसे और कब होती है, उद्देश्य यदि ठीक हो, उद्देश्य हम ठीक रखते हैं और किसी की पूजा ऊपरी रूप से कर देते हैं, प्रतिष्ठा दे देते हैं, एकांतिकता की हानि नहीं होती, किंतु तत्व चीज को नहीं समझते हैं और फिर उनको जो आज्ञा देते हैं उसमें एकांतिकता नहीं होती है। यदि शंकर को भगवान का दास समझा जाए और समझ करके इनके द्वारा भगवान की प्रीति मिल सकती है हमको, तो यहां पर इनकी पूजा करना वो एक अंशिकता की हानि नहीं है किंतु यदि हम शंकर जी को समझें जैसे ये स्वयं ईश्वर है और इनकी आराधना सबसे श्रेष्ठ है और कृष्ण भी भगवान है उनकी उनकी पूजा भी सर्वश्रेष्ठ है तब तो दोनों की पूजा जो करेंगे उसमें एकांतिकता की हानि है यदि किसी कारण से हमको पता मिल जाए तो भाई गणेश की सेवा करने से भी राजा जी की किताब मिल सकती है अपने पर तो संदेह की जाती हमारे अंदर संदेह है यदि एक पीढ़ी की सेवा करने से और तुम्हें प्रसन्न होकर के हमको राधा जी का राष्ट्र दे दे तो हमको पिंडी की पूजा करते हैं हमको राधा जी का मिलना अभिष्ट है किसी की पूजा अभिष्ट नहीं है हमको उनकी पूजा के लिए राधा जी यदि पुलिंदियों की पूजा करने से पुलिंदी जानते हैं पुलिंदियों की पूजा करने से उनकी आराधना करने से राधा जी की कृपा हो जाए तो पुलिंदी की हम सौ बार आराधना करें पुलिंद मैंने गोवर्धन की पुलिंदी है ये सब गोविंद निरामक की बातें हैं अर्थात हमको किस चीज की जरूरत है ये चीज देखना हमारा अभिष्ट कैसे हो यदि एक नौकर के लिए सेवा करने से प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी अच्छा तो भाई तुम तो मिला के दो तुम जो कर दो तुमको खुश कर दो हमको मिलने की जरूरत है इसलिए कह रहे हैं कि तुम यदि शिकायत की कह देगा तो तुम्हारा काफी प्रखर मनस्क तुम यदि रघुनाथ जय श्री राम की जय ये यदि कीर्तन करेगा तो तुम्हारा लोग ये कनिष्ठता है अनन्यता नष्ट नहीं होती क्यों तुम किस लिए कर रहे हो तुम्हारे इष्ट जो मधुर गोपाल के लिए सीधा रास्ता वहां से मिल जाएगा वो रास्ता छोड़ देंगे आने को लोग अंदर नहीं जाने देंगे उधर